नमस्कार, आज हम साथ मिलकर चैप्टर 9 पीडीएफ के कुछ अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इस अध्याय का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, द ब्रिज बिल्डर्स, प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस।
जी हाँ, ब्रिज बिल्डर्स बहुत सही नाम है इनका।
तो आज हमारा इरादा क्या है? हम इस अध्याय में जो प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस के मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी मतलब आसान तरीके से। हम लर्निंग आउटकम्स पर भी ध्यान देंगे, जैसे कि प्रेपोजिशंस कंजंक्शंस क्या हैं, प्रेपोजिशंस के प्रकार, उनके उपयोग, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर के लिए, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, और हाँ, आम गलतियां भी जो हो जाती हैं प्रेपोजिशंस के साथ, और फिर कंजंक्शंस, उनके प्रकार जैसे कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, ये सब देखेंगे।
बिल्कुल, एक तरह से पूरे अध्याय का सार समझने की कोशिश करेंगे।
तो तैयार हैं, चलिए इन भाषाई ब्रिज बिल्डर्स की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस से। ये छोटे छोटे शब्द हैं, पर वाक्यों में इनका बड़ा रोल होता है। अध्याय में परिभाषा दी है, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब आसान भाषा में, ये शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं।
बिल्कुल सही, ये रिश्ता बताते हैं।
हाँ, जैसे अध्याय में ही उदाहरण है, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। यहाँ अंडर शब्द बिल्ली और मेज के बीच का मतलब स्थान का रिश्ता बता रहा है कि बिल्ली कहाँ है, मेज के नीचे।
जी हाँ,
या फिर वी सैट नियर द लेक, हम झील के पास बैठे। यहाँ नियर बता रहा है कि हम और झील के बीच क्या संबंध था, पास होने का। एक और था, शी रैन टूवर्ड्स द गेट, वो गेट की ओर दौड़ी, तो टूवर्ड्स ने दिशा बता दी, है ना, कमाल।
बिल्कुल कमाल है, ये छोटे शब्द पूरे दृश्य को जैसे चित्रित कर देते हैं। और ये रिश्ते, जैसा आपने कहा, कई तरह के हो सकते हैं। अध्याय में एक तालिका भी है इसके लिए। प्रेपोजिशंस हमें बताते हैं टाइम, समय, कोई चीज कब हुई, जैसे ऑन मंडे एट 5 PM, इन जून, बिफोर लंच, आफ्टर द मीटिंग। सोचिए, ऑन, एट, इन, समय बताने में कितने बारीक अंतर बता देते हैं ये।
हाँ, ये तो है, दिन के लिए ऑन, खास समय के लिए एट, महीने के लिए इन।
बिल्कुल, फिर है प्लेस, स्थान, कोई चीज कहाँ है, जैसे इन द बॉक्स, ऑन द टेबल, अंडर द बेड, नियर द पार्क, बिहाइंड द ट्री, ये जगह का नक्शा दे देते हैं।
अच्छा,
डायरेक्शन, कोई चीज किधर जा रही है, जैसे टू द स्टोर, टूवर्ड्स द एग्जिट, इन टू द रूम, आउट ऑफ द बिल्डिंग, अक्रॉस द रिवर, ये गति और दिशा बताते हैं।
इन टू अ रूम मतलब कमरे के अंदर जाना।
हाँ, गति के साथ अंदर, और मैनर, तरीका, कोई काम कैसे हुआ, जैसे विथ केयर, सावधानी से, बाय मिस्टेक, गलती से, इन हरी, जल्दी में, लाइक अ प्रोफेशनल, ये बताते हैं कि एक्शन कैसे हुआ।
अच्छा, तरीका भी बताते हैं, जैसे विद केयर।
जी,
और दिलचस्प बात यही है कि कैसे ये छोटे से शब्द ऑन, इन, एट, टुवर्ड्स, विद, वाक्य के मतलब को कितनी सटीकता दे देते हैं। इनके बिना तो भाषा कितनी अधूरी और अस्पष्ट हो जाएगी। सोचिए, अगर हम कहें द बुक इज द टेबल, कोई मतलब ही नहीं निकलता।
हाँ बिल्कुल, ऑन द टेबल या अंडर द टेबल कहते ही बात साफ हो जाती है।
एकदम। और हाँ, ये प्रेपोजिशंस अक्सर अकेले नहीं आते, ये अपने साथ नाउन्स या प्रोनाउन्स लेकर एक ग्रुप बनाते हैं। अध्याय में इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा गया है। परिभाषा के अनुसार ये प्रेपोजिशन से शुरू होता है और नाउन या प्रोनाउन पे खत्म होता है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा फ्रेज मिलकर वाक्य में या तो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का।
जी हाँ, ये उसकी भूमिका पे निर्भर करता है।
यहाँ इन द वाज एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये किसके बारे में बता रहा है? फूलों के बारे में। कौन से फूल? जो वाज में है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है।
सही, फूलों की विशेषता बता रहा है।
और दूसरा उदाहरण, ही अराइव्ड आफ्टर द शो। यहाँ आफ्टर द शो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये किसके बारे में बता रहा है? उसके आने, अराइव्ड के बारे में, कब पहुंचा, शो के बाद। तो यहाँ ये एडवर्ब का काम कर रहा है, समय बता रहा है।
कितना वर्सटाइल है? है तो वर्सटाइल, लेकिन यहीं पर एक चुनौती भी आती है, सही प्रेपोजिशन चुनना। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग, खासकर भाषा सीखने वाले, गलतियां करते हैं। अध्याय के कॉमन एरर सेक्शन में इसका जिक्र है।
ओह हाँ, कॉमन एरर्स, जैसे
एक उदाहरण दिया है, शी सैट ऑन द चेयर इन द सोफा। ये सुनने में ही मतलब थोड़ा अटपटा है, शायद वो कहना चाहते थे कि सोफे के पास वाली कुर्सी, नियर द सोफा, या सोफे में बनी हुई कुर्सी। वाक्य रचना साफ नहीं है।
हाँ, ये तो गड़बड़ लग रहा है।
एक और आम गलती डायरेक्शन वाले प्रपोजिशंस में होती है, जैसे अध्याय का उदाहरण, आई वॉक्ड इन द स्टेयर्स। सीढ़ियों के अंदर तो कोई नहीं चलता। सही प्रपोजिशन यहाँ अप या डाउन होना चाहिए था, आई वॉक्ड अप द स्टेयर्स या आई वॉक्ड डाउन द स्टेयर्स। संदर्भ के हिसाब से सही शब्द चुनना बहुत जरूरी है।
ये बात तो है। तो फिर सही प्रपोजिशन कैसे चुने, इसका कोई पक्का नियम है?
देखिए, कोई एक सीधा फार्मूला तो नहीं है, काफी हद तक ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है और बहुत सारे कॉमन फ्रेजेस होते हैं जिन्हें हमें सीखना और याद रखना पड़ता है। जैसे हम लिसन टू म्यूजिक कहते हैं लिसन म्यूजिक नहीं, या इंटरेस्टेड इन समथिंग इंटरेस्टेड ऑन समथिंग नहीं।
अच्छा, तो मतलब अभ्यास और पढ़ने सुनने से ही आएगा।
बिल्कुल, जितना ज्यादा आप भाषा के संपर्क में रहेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ही ये स्वाभाविक रूप से सही लगने लगेगा। अभ्यास ही कुंजी है।
हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, अभ्यास और संदर्भ। प्रपोजिशंस भाषा को स्ट्रक्चर और क्लैरिटी देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे दूसरे ब्रिज बिल्डर्स की, कंजंक्शंस की। अगर प्रपोजिशंस शब्दों का रिश्ता बताते हैं तो कंजंक्शंस तो सचमुच पुल बनाते हैं। ये शब्दों, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं।
जी हाँ, ये जोड़ने का काम करते हैं।
अध्याय कहता है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। और ये इतने जरूरी क्यों है? अध्याय में एक अच्छी बात लिखी है, विदाउट कंजंक्शंस वी वुड हैव टू स्पीक इन शॉर्ट चॉपी सेंटेंसेस। मतलब इनके बिना हमें छोटे छोटे टूटे फूटे वाक्यों में बोलना पड़ता। कंजंक्शंस मेक अ लैंग्वेज एंड राइटिंग फ्लो स्मूथली। ये भाषा को प्रवाह देते हैं। सोचिए, अगर हम कहें मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास इरेजर है, कैसा लगता है?
हाँ, बहुत बिखरा हुआ और बचकाना सा लगता है।
बिल्कुल, इसके लिए कंजंक्शन लगाकर हम कहते हैं मेरे पास एक पेन, एक पेंसिल एंड एक इरेजर है। कितना स्वाभाविक और जुड़ा हुआ।
सही कहा,
ये प्रवाह ले आते हैं।
तो असल मतलब हुआ साफ और सहज कम्युनिकेशन। कंजंक्शंस हमें अलग अलग विचारों या जानकारी के टुकड़ों को एक साथ पिरोने में मदद करते हैं। इससे हमारी बात ज्यादा व्यवस्थित और समझने में आसान हो जाती है।
बिल्कुल, और जैसे पुल अलग अलग तरह के होते हैं, वैसे ही कंजंक्शंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरह के जुड़ाव बनाते हैं।
सही कहा।
अध्याय की तालिका तीन मुख्य प्रकार बताती है।
हाँ, कौन कौन से?
पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये बराबर महत्व के हिस्सों को जोड़ते हैं, दो शब्द, दो फ्रेजेस या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो अपने आप में पूरे वाक्य बन सकते हैं। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो।
अच्छा, फैन बॉयज, ये तो आसान है याद रखना। हाँ, ये अक्सर कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे अध्याय का उदाहरण, आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। यहाँ आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एक पूरा विचार है और इट वॉज रेनिंग भी, बट इन दो बराबर के पर विरोधी विचारों को जोड़ रहा है। एंड जोड़ता है और विकल्प देता है, सो परिणाम बताता है वगैरह।
समझ गया, ये बराबर वालों को जोड़ते हैं।
जी, दूसरा प्रकार है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये थोड़े अलग हैं। ये एक मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज अपने मतलब के लिए मेन क्लॉज पर निर्भर होता है, अकेला खड़ा नहीं हो सकता। इनके कुछ उदाहरण हैं, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हाइल, सिंस, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अंटिल, एज वगैरह। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब जिनमें एक मुख्य और एक आश्रित हिस्सा हो।
बिल्कुल, जैसे अध्याय का उदाहरण, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहाँ आई स्टेड होम मेन क्लॉज है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ये कारण बता रहा है पर अकेला वाक्य नहीं बन सकता, बिकॉज यहाँ कारण बता रहा है। ऐसे ही ऑल्दो विरोधाभास दिखाता है, इफ शर्त बताता है। ये वाक्यों में गहराई लाते हैं।
ये तो वाक्यों को ज्यादा विस्तृत बनाते हैं।
जी हाँ। और तीसरा प्रकार है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये हमेशा जोड़ों में आते हैं, पेयर्स में, और वाक्य के दो हिस्सों को संतुलित तरीके से जोड़ते हैं।
जैसे
आइदर और, दो में से एक, नीदर नॉर, दोनों में से कोई नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक के साथ दूसरा भी, बोथ एंड, दोनों।
अच्छा, ये जोड़ी वाले, आइदर और, नीदर नॉर।
हाँ, उदाहरण, यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी। यहाँ आइदर और मिलकर चाय और कॉफी के बीच चुनाव दे रहे हैं। या नॉट ओनली इज शी इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, यहाँ नॉट ओनली और बट ऑल्सो दो गुणों को एक साथ जोड़ रहे हैं।
ठीक है, तो ये तीन मुख्य प्रकार हो गए, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव।
जी, और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे कंजंक्शन का प्रकार चुनने से हम विचारों के बीच का सही तार्किक संबंध दिखा पाते हैं।
जी,
क्या हम दो विचारों को सिर्फ जोड़ रहे हैं एंड, या उनमें विरोध दिखा रहे हैं बट ऑल्दो, क्या कारण परिणाम बता रहे हैं बिकॉज सो, या शर्त रख रहे हैं इफ अनलेस। सही कंजंक्शन चुनना हमारी बात को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाता है।
हाँ, और अध्याय का लिंकिंग आइडियाज वाला हिस्सा इसी बात पर जोर देता है। ये सिर्फ वाक्यों को जोड़ना नहीं है बल्कि विचारों को सही तरीके से जोड़ना है।
जी,
अध्याय में कुछ उदाहरण भी हैं कि कैसे अलग अलग कंजंक्शंस अलग अलग तरह के लिंक बनाते हैं।
जैसे
कॉन्ट्रास्ट के लिए, हाँ, कंट्रास्ट दिखाने के लिए बट ऑल्दो हाउ वेयर एज का इस्तेमाल होता है। ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड, या ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड, दोनों में विरोधाभास है। कॉज रीजन बताने के लिए बिकॉज, सिंस, एज बहुत आम है। शी वॉज लेट बिकॉज द बस डिडंट अराइव ऑन टाइम, कारण साफ है। कंडीशन बताने के लिए इफ अनलेस, इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन गो आउट, शर्त है। अनलेस यू स्टडी यू वोंट पास।
बिल्कुल, ये लॉजिक को स्पष्ट करते हैं।
और चॉइस देने के लिए और, आइदर और, नीदर नॉर, वुड यू लाइक टी और कॉफी। और एडिशन के लिए एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ही प्लेज द गिटार एंड सिंग्स।
जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसमें आता है।
हाँ, तो ये समझना वाकई दिलचस्प है कि सही कंजंक्शन चुनने से हमारा लेखन या भाषण सिर्फ फ्लुएंट ही नहीं बल्कि ज्यादा लॉजिकल और प्रिसाइज भी बनता है। खूब कहा, आर्किटेक्ट। तो हमने प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस, इन दोनों ब्रिज बिल्डर्स पे काफी बात की। अध्याय के अंत में एक क्विक रिव्यू तालिका है जो मुख्य बातों को संक्षेप में याद दिलाती है। एक नजर डाल लेते हैं। प्रेपोजिशन, ये नाउन प्रोनाउन का संबंध दिखाता है, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन से शुरू, नाउन प्रोनाउन पे खत्म, एडजेक्टिव एडवर्ब का काम। कंजंक्शन, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, फैनबॉयज, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। लिंकिंग आइडियाज, कंजंक्शंस विचारों को तार्किक रूप से जोड़कर भाषा को सहज बनाते हैं।
बिल्कुल, और अब सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं, इन प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस में महारत हासिल करना क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ ग्रामर टेस्ट के लिए है? नहीं।
हाँ, क्यों मायने रखता है ये सब?
सोचिए, जब हम इन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? पहली बात, क्लैरिटी। हमारी बातें ज्यादा स्पष्ट होती हैं, सुनने वाले को ठीक ठीक समझ आता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ, कब, क्यों, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता।
सही है, अस्पष्टता कम होती है।
दूसरी बात, फ्लो। हमारी भाषा चाहे लिखी हो या बोली हुई, ज्यादा सहज और प्रवाहपूर्ण लगती है। टूटे फूटे वाक्यों की जगह जुड़े हुए संगठित विचार आते हैं। तीसरी, सोफिस्टिकेशन। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना पाते हैं, साधारण बातों से आगे बढ़कर ज्यादा जटिल और सूक्ष्म बातें कह पाते हैं। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत मदद करते हैं।
भाषा ज्यादा परिष्कृत लगती है।
और चौथी, एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी। जब हम आम गलतियों से बचते हैं तो हमारी भाषा ज्यादा सटीक लगती है और हम ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। गलत प्रेपोजिशन या कंजंक्शन कभी कभी मतलब ही बदल देता है।
हाँ, अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
इसीलिए अध्याय का शीर्षक द ब्रिज बिल्डर्स इतना सटीक है। ये शब्द भाषा में सचमुच पुल बनाते हैं। ये अलग थलग पड़े विचारों और जानकारी के द्वीपों को जोड़कर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रभावी संचार की नींव इन्हीं पर टिकी है। चाहे ईमेल हो, प्रेजेंटेशन हो या दोस्तों से बात, ये पुल हर जगह जरूरी हैं। इनके बिना हमारे विचार बिखर जाएंगे।
बिल्कुल सही कहा। तो ये थी अध्याय 9, द ब्रिज बिल्डर्स, प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस पर हमारी चर्चा। हमने देखा कि ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं बल्कि प्रभावी संवाद के शक्तिशाली उपकरण हैं।
हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अंतिम विचार रखना चाहूंगी जो सीधे अध्याय से जुड़ा है। अध्याय में प्रैक्टिस एक्टिविटीज और एक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट भी दी गई है। ये हमें याद दिलाती हैं कि नियमों को जानना एक बात है और उन्हें स्वाभाविक रूप से सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना, वो असली चुनौती और लक्ष्य है।
जानना और इस्तेमाल करना दो अलग बातें हैं।
बिल्कुल, हम में से कितने लोग बोलते या लिखते समय सचेत रूप से सोचते हैं कि यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा या इन दो विचारों को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा कंजंक्शन कौन सा है? शायद कम ही लोग।
हाँ, ये तो अपने आप ही होता है अक्सर।
तो मेरा सुझाव है, अगली बार जब आप कुछ लिखें, कोई मैसेज, ईमेल या रिपोर्ट, या जब आप किसी से बात करें, तो एक पल रुकें और ध्यान दें। आप अपने विचारों के बीच पुल बनाने के लिए इन प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या वे पुल मजबूत हैं, सही दिशा में हैं? क्या वे वही रिश्ता बना रहे हैं जो आप बनाना चाहते हैं? ये आत्मनिरीक्षण ही सुधार की कुंजी है। यहीं से हम केवल नियमों को जानने वाले से भाषा के कुशल उपयोगकर्ता बनते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?
बहुत ही विचारोत्तेजक नुक्ता, सचमुच सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस अध्याय की गहराइयों में उतरने के लिए धन्यवाद।